ये आकाशवाणी है। अब आप कनक लता से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश को अत्यंत महत्वपूर्ण खनिजों, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं का अपने स्वार्थ के लिए हथियार के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। रियो डी जनेरो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान संवाद सत्र में श्री मोदी ने कहा कि महत्वपूर्ण खनिजों और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाकर आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित और लचीला बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक परियोजनाओं में मांग आधारित निर्णय लेने, वित्तीय स्थिरता और अच्छी क्रेडिट रेटिंग बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। भारत ने कहा है कि ब्रिक्स के नेताओं के घोषणा पत्र में ग्लोबल साउथ के देशों की अधिकतर चिंताओं को शामिल किया गया है। ब्राजील के रियो डी जनेरो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन के समापन के बाद संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव दम्मू रवि ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुपक्षीय वैश्विक संगठनों में सुधार की आवश्यकता की बात जोरदार तरीके से कही। श्री मोदी ने कहा कि 20वीं सदी के संगठनों में 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने की क्षमता का अभाव है और बहुध्रुवीय तथा समावेशी विश्व व्यवस्था की आवश्यकता है।
He reiterated that the global organizations of the 20th century lacked the capacity to deal with the challenges of the 21st century, and therefore he underscored the importance of reforming the multilateral organization. He called for a multipolar and inclusive world order and stated that the global governance institution must undergo urgent reform to reflect the contemporary realities and times.
श्री दम्मू रवि ने यह भी कहा कि इस शिखर सम्मेलन में पहलगाम आतंकवादी हमलों की निंदा सभी देशों ने जोरदार तरीके से की। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र भारत के पड़ोसी देश को एक कड़ा संदेश देता है। उधर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ब्रिक्स की अमरीका विरोधी नीतियों के साथ खुद को जोड़ने वाले देशों पर 10% का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि इस नीति में कोई छूट नहीं दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के घरेलू उपकरणों की प्रदर्शन क्षमता ने स्वदेशी रक्षा उत्पादों की वैश्विक मांग को बढ़ा दिया है। नई दिल्ली में आज नियंत्रक सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत के रक्षा क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं।
हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ हमारा बजट न बढ़े बल्कि उस बजट का राइट डिप्लॉयमेंट एट द राइट टाइम और राइट ऑब्जेक्टिव भी उतना ही जरूरी हो। आज हमारे डिफेंस सेक्टर की ओर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमने शौर्य दिखाया है हमारे सेना के जवानों ने, उसके बाद हमारे इंडिजिनस प्रोडक्ट की ग्लोबल डिमांड और बढ़ रही है।
कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने खनन क्षेत्र के विकास, जन कल्याण और पर्यावरण संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। श्री रेड्डी आज जयपुर में 7 सितारा और 5 सितारा रेटिंग प्राप्त खदानों के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों में खदानों के आसपास रहने वाले लोगों और खदानों में काम करने वाले श्रमिकों के हितों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR पर निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की सहमति दे दी। मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को होगी। आगामी जनगणना के दौरान स्वगणना के लिए समर्पित वेब पोर्टल उपलब्ध होगा। यह पोर्टल जनगणना 2027 के दोनों चरणों के लिए उपलब्ध रहेगा। सोशल मीडिया पोस्ट में भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त ने कहा कि ये देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। डेटा अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में मोबाइल ऐप का उपयोग करके एकत्र किया जाएगा। इराक में एक गुफा की तलाशी के दौरान मीथेन गैस के कारण तुर्की के 12 सैनिकों की मौत हो गई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि कल तलाशी और निकासी अभियान के दौरान कम से कम 19 सैनिक गैस के संपर्क में आए और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने यह भी बताया है कि उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज गरज के साथ तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।